हरे कृष्णा प्रभु जी माता जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। और प्रभुपाद जी की कृपा से ये जो अद्भुत श्रीमद् भागवत का प्रसंग चल रहा है, तो आज उसमें हम लोग सातवें स्कंद के चौथे अध्याय के 33वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। लेकिन जिस प्रकार हम सब जानते हैं कि श्रीमद् भागवतम और श्री कृष्ण अभिन्न हैं, उनमें कोई भिन्नता नहीं है, तो लेकिन उनमें प्रवेश करने के पहले हम सबका आशीर्वाद लेंगे। ज्ञान श्लोक का प्रभु जी माता जी। ओम अज्ञान तिमरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथन्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादांश्च सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्या नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्ट प्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नष्ट की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण प्रभु जी माता जी। स्क्रीन पे क्लियर है प्रभु? सो हम लोग सातवें स्कंद के चौथे अध्याय से श्लोक संख्या 33 देखेंगे प्रभु जी माता जी। नाद्वेग्न चित्तो व्यसने सुनिस्प्रहा नाद्वेग्न चित्तो व्यसने सुनिस्प्रहा सुते सुद्रष्टे सुगुणे सुवस्तुद्रक् श्रुते सुद्रष्टे सुगुणे सुवस्तुद्रक् दातेन्द्रिय प्राण शरीरधि सदा दातेन्द्रिय प्राण सती शरीर दी सदा प्रशांत कामो रहिता सुरो सुरहा प्रशांत कामो रहिता सुरो सुरहा वर्ड टू वर्ड मीनिंग ट्रांसलेशन और परपोर्ट डिवाइन ग्रेस इसी भक्तों स्वामी श्रील प्रभुपाद की ना नहीं उद्विग्न विचलित चित्तहा जिसकी चेतना व्यसनेसु कठिन परिस्थितियों में निही इस प्रहा इच्छा रहित श्रुतेसु सुनी हुई बातों में विशेषतया पुण्य कर्मों के कारण स्वर्ग लोक को उत्थान दृष्टेशु साथ ही क्षणिक दृश्य वस्तुओं में गुणेशु भौतिक प्रकृति के गुणों के अंतर्गत इंद्रिय तृप्ति वाले विषयों में अवस्तु द्रक देखते हुए मानो असार हो दांत नियमित करते हुए इंद्रिया प्राण सजीव शक्ति शरीर धीही तथा बुद्धि सदा सदैव प्रशांत शांत किया गया कामहा जिसकी भौतिक इच्छाओं से रहित पूर्णतया विहीन असुरहा आसुरी प्रकृति असुरहा यद्यपि असुर वंश में उत्पन्न अनुवाद यद्यपि प्रहलाद महाराज का जन्म असुर वंश में हुआ था किंतु वे स्वयं असुर न होकर भगवान विष्णु के परम भक्त थे अन्य असुरों की तरह वे कभी भी वैष्णवों से ईर्ष्या नहीं करते थे कठिन परिस्थिति आने पर वे कभी क्षुब्ध नहीं होते थे और वेदों में वर्णित सकाम कर्मों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भी रुचि नहीं लेते थे निसंदेह वे हर भौतिक वस्तु को व्यर्थ मानते थे इसलिए वे भौतिक इच्छाओं से पूर्णतया रहित थे वे सदैव अपनी इंद्रियों और प्राण पर संयम रखते थे स्थिर बुद्धि तथा सत्य संकल्प में होने के कारण उन्होंने सारी विषय वासनाओं का दमन कर दिया था तो मेरे पीछे दोहराएंगे प्रभु जी माता यद्यपि प्रहलाद महाराज का जन्म असुर वंश में हुआ था किंतु वे स्वयं असुर न होकर भगवान विष्णु के परम भक्त थे अन्य असुरों की तरह वे कभी भी वैष्णवों से ईर्ष्या नहीं करते थे कठिन परिस्थिति आने पर वे कभी क्षुब्ध नहीं होते थे और वेदों में वर्णित सकाम कर्मों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भी रुचि नहीं लेते थे निसंदेह वे हर भौतिक वस्तु को व्यर्थ मानते थे इसलिए वे भौतिक इच्छाओं से पूर्णतया रहित थे वे सदैव अपनी इंद्रियों तथा प्राण पर संयम रखते थे स्थिर बुद्धि तथा संकल्प में होने के कारण उन्होंने सारी विषय वासनाओं का दमन कर दिया था तात्पर्य इस श्लोक से पता चलता है कि कोई मनुष्य केवल जन्म के कारण योग्य अथवा अयोग्य नहीं होता प्रहलाद महाराज जन्म से असुर थे फिर भी उनमें पूर्ण ब्राह्मण के गुण पाए जाते थे ब्राह्मण्य शील संपन्न कोई भी व्यक्ति गुरु के निर्देशन में के अंतर्गत पूर्णतया योग्य बन सकता है प्रहलाद महाराज इसका ज्वलंत उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि किस प्रकार गुरु का चिंतन करके उनके आदेशों को शांति पूर्वक ग्रहण किया जाए। श्रीला प्रभुपाद की सो हरे कृष्णा प्रभु जी माती, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग को नहीं पता कि हमारे ऊपर कितनी साधु कृपा और कितनी भगवत कृपा है। श्रीला प्रभुपाद ने ये जो हमको कार्यक्रम दिया है, पूरा भक्तिमय कार्यक्रम, भगवान भगवत गीता में कहते हैं 9वें अध्याय के 14वें श्लोक में, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्चेद् व्रता नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। सततम कीर्तयन्तो माम, सतत कीर्तन करो अर्जुन, सतत कीर्तन करो। तो वास्तव में प्रभु जी माता जी ये सब क्या है? हम सुबह 3:30 बजे उठ करके और संध्या समय तक 9:30 बजे तक जो भक्त लोग हैं, भगवान के दर्शन, भगवान के गुणगान, भगवान की जितनी भी उनका संग है, भगवान के भक्तों का संग है, उसको प्राप्त करने में लगे रहते हैं। तो वास्तव में ये क्या है? सततम कीर्तयन्तो माम। कल हमने सुना, प्रभु जी ने बहुत सुंदर व्याख्यान किया, जो प्रह्लाद महाराज के गुण हैं, ब्रह्मन्न शील संपन्नहा, उसके बारे में बड़ी सुंदर विवेचना की, एक एक गुण के बारे में बताया। और आज सुखदेव गोस्वामी की कृपा से जो नारद मुनि कह रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी कृपा से श्रीमद भागवत हम लोग सुन रहे हैं, लेकिन श्रीमद भागवत में अलग अलग प्रसंग चलते हैं, कभी विदुर जी बोलते हैं, कभी मैत्रेय मुनि बोलते हैं, कभी हम लोग देखते हैं सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं। तो अभी जो ये हम सुन रहे हैं, इसमें हम क्या सुन रहे हैं कि जो प्रह्लाद महाराज हैं, उनके आदित्य गुण जो हैं, वो कहाँ कहाँ और कैसे कैसे हैं। तो कल जिनों को गुणों की हमने चर्चा सुनी, आज उसके आगे वर्णन करते हैं। और इस वर्णन में क्या कहा गया है? ना उद्विग्न चित्तो, सबसे पहला शब्द क्या है? ना उद्विग्न। लेकिन अगर हम लोग ट्रांसलेशन देखेंगे तो श्रीला प्रभुपाद ने किसकी व्याख्या सबसे पहले की है? रहितो असुरा असुराहा, रहितो असुरो सुराहा, कि वो आसुरी जो कुल है उसमें जन्म लेने वाले प्रह्लाद महाराज। तो श्रीला प्रभुपाद ने ट्रांसलेशन इतना अद्भुत किया है प्रभु जी माता जी, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि कभी वर्ड टू वर्ड मीनिंग में कुछ लिखा होता है, लेकिन ट्रांसलेशन में हमको ढूंढ नहीं पाते, कुछ दूसरा लिखा होता है, लेकिन वो हम समझ नहीं पाते, क्योंकि हमारी बुद्धि कैसी है? अल्प है। और उस अल्प बुद्धि के बाद हम सोचते हैं कि ऐसा क्यों लिखा है। तो जैसे भगवत गीता क्या प्रभुपाद जी ने दी हमको टाइटल क्या? एज इट इज, यथारूप। तो जैसा यथारूप प्रभुपाद जी ने ट्रांसलेशन किया है, वैसा ही हमको ग्रहण करना चाहिए। तो हम लोग देखेंगे पहले जो श्रीला प्रभुपाद के गुण हैं, प्रभुपाद जी के, ये प्रह्लाद महाराज के जो गुण हैं, उसमें सबसे पहले किसकी चर्चा की है कि यद्यपि प्रह्लाद महाराज का जन्म असुर वंश में हुआ था, किंतु वे स्वयं असुर न होकर भगवान विष्णु के परम भक्त थे। भगवत गीता में 4वें अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान वर्णन करते हैं, क्या कहते हैं कि जो गुण और कर्म के विभाग से मैंने सारे जितने भी हैं उनका डिवीजन मैंने किया है, और जो गुण और कर्म के विभाग से डिवीजन किया है, इसका मतलब क्या है प्रभु जी माता जी? वो किससे नहीं किया है? जन्म के हिसाब से नहीं किया है। और हम लोग क्या मान के चलते हैं कि डॉक्टर का बेटा है तो डॉक्टर बन जाएगा, ठीक है, और अगर डॉक्टर का बेटा नहीं है तो इंजीनियर का बेटा है तो इंजीनियर बन जाएगा। लेकिन वास्तव में बन सकता भी है और नहीं भी बन सकता है, क्योंकि भगवान ने क्या कहा? गुण कर्म विभागसा तस्य कर्तारम कर्तारम विधि में, कि जो करने वाला है, जो भी व्यक्ति है, उसके लिए चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागसा, जो चतुर्वर्ण मैंने बनाए हैं उसका डिविजन किसके हिसाब से किया है? गुण और कर्मों के हिसाब से। प्रह्लाद महाराज का जन्म कहां हुआ? असुर कुल में हुआ। उनके पिता हिरण्यकश्यपु, उनके दादा कौन है, कश्यप मुनि, और उनके परदादा ब्रह्मा जी। कितना अद्भुत कुल है प्रभु जी माता जी, सोचिए कितना अद्भुत कुल है। भगवान स्वयं ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी से कश्यप मुनि और हिरण्यकश्यपु और प्रहलाद महाराज। तो जब कब कुल परंपरा आती है तो कुल परंपरा में बीच में कहीं कोई कड़ी टूट जाती है। उस कड़ी को सिद्ध करने के लिए भगवान किसी ना किसी रूप में अपने भक्त को ऐसा जन्म दे करके भेजते हैं जो पूरे कुल का उद्धार कर देता है। श्रीमद् भागवतम में प्रभु जी माता जी हम लोग बड़ा सुंदर देखते हैं कि पांचवें स्कंध में जब जम्बूद्वीप का वर्णन आता है तो जम्बूद्वीप के वर्णन में किम जो हनुमान जी प्रयास करते हैं, बड़ा सुंदर श्लोक उन्होंने बोला है। पांचवें स्कंध के 19वें अध्याय का 7वां श्लोक, ना जन्म नूनम मैं तो न सौभगम ना वाक बुद्धि न कृति स्तोष हेतु तैद्रस्य सष्टान पिनो वनोक्षास चकार सखे बदल लक्ष्मण लक्ष्मण अग्रज। लक्ष्मण के अग्रज कौन? भगवान राम। कहते हैं ना जन्म नूनम महतो ना सौभगम, कि मेरा जन्म भी किस कुल में हुआ है? कपि के कुल में हुआ है। विद्या कुछ नहीं है, कोई सौभाग्य नहीं है, वाक चतुरता नहीं है, बुद्धि नहीं है, कोई भी मेरे पास क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन फिर भी क्यों भगवान लक्ष्मण के अग्रज भगवान राम ने स्वीकार किया है? क्योंकि एक ही क्वालिफिकेशन है, वो क्या है? भगवान की निर्मल भक्ति, विमल भक्ति, और ऐसी भक्ति जो प्रेममयी है। उस भक्ति के कारण हनुमान जी कहते हैं कि भगवान से जो मित्रता है वो स्थापित नहीं की जा सकती। किसके आधार पर? भौतिक गुणों के आधार पर। अगर हम भौतिक गुण अर्जित कर लें, कोई व्यक्ति किसी भी पोजीशन पर पहुंच जाए, प्रेसिडेंट कहीं आ जाए, किसी भी साइंटिस्ट बन जाए, कोई भी हाईएस्ट पोजीशन ले ले, लेकिन उसका कोई यूज नहीं है। हम लोग देखते हैं कि अभी इसी जीवन में जो बड़ी बड़ी हस्तियां बन गई हैं, सिकंदर, रावण, जितने बड़े बड़े नाम सुनते हैं अभी का देखें तो, जितने बड़े प्रेसिडेंट हुए हैं यूएसए सबसे शक्तिशाली कंट्री के, वो सब क्या हुए हैं? एक दिन आकर के उनकी स्थिति सामान्य हो जाती है। तो गुणों के आधार पर हम किसी को स्वीकार नहीं कर सकते कि उसकी बुद्धि चढ़ी हुई है, उसकी बुद्धि बढ़ी हुई है। हम लोग को क्या करना चाहिए? केवल उसने जो भक्ति की है, भगवान का जो नाम लिया है, उसके आधार पर। हनुमान जी बड़ी सुंदर प्रेयर्स करते हैं इसमें। और इसी प्रकार से जब प्रहलाद महाराज अपनी प्रेयर्स करेंगे और भगवान को जाकर के नरसिंह भगवान को कहेंगे, तो उसमें दो श्लोक प्रहलाद महाराज बोलते हैं। सातवें स्कंद के 9वें अध्याय का 8वां और 9वां श्लोक वो बहुत अद्भुत है प्रभु जी माता जी। क्या कहते हैं? श्री प्रहलाद वाचा ब्रह्मादसुरगणा मुनियत सिद्धा सत्वेक तनागत युवत्साम प्रवाही नाराधि तुम पुरु गुणेर गुणापि विप्रो पिप्रुः किम त्रोष्टुमर्हति से मे हरि गुरु जाते। कि असुर परिवार में जन्म लेने के कारण प्रहलाद जी को क्यों भेजा गया? प्रहलाद जी ने क्यों प्रार्थना की? ब्रह्मा जी स्वयं, शिव जी, माता लक्ष्मी स्वयं, कोई भी भगवान नरसिंह को क्रोध जो है उसको शांत नहीं कर सका। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि भैया इनका तो क्रोध किससे शांत हो नहीं रहा है, इनका क्रोध तो अपरंपार हो रहा है, और इस क्रोध से पूरा ब्रह्मांड नष्ट ना हो जाए, कोई उपाय नहीं है, जिसके कारण क्रोध हुआ है मैं उसी को लेकर के चलता हूँ। ब्रह्मा जी ने प्रहलाद का बेटा आओ और तुम ही जाकर के प्रहलाद विष्णु नरसिंह भगवान का क्रोध शांत करो। तो नरसिंह भगवान की जो वो प्रेयर्स करते हैं तो क्या सुंदर कहते हैं कि असुर जन्म लेने के कारण यह कैसे संभव है कि मैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए उपयुक्त प्रार्थना कर सकूं? देखिए कितना सुंदर बात बताई है। कि जन्म कोई भी हो लेकिन हमको आभास होना चाहिए कि हम जहां खड़े हैं किसके सामने खड़े हैं। जब हम सुबह श्री श्री श्याम चंद्र जी के सामने खड़े होते हैं, कृष्ण बलराम जी के सामने खड़े होते हैं, गौर नित्याय जी के सामने खड़े होते हैं, हमारी स्थिति क्या है। प्रहलाद महाराज हमको सिखाते हैं कि हमारी स्थिति बड़ी तुच्छ है, हम कुछ भी नहीं है, और हमको सौभाग्य मिला है उनके दर्शन करने का। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि यह कैसे संभव है कि मैं आपको प्रसन्न कर सकूं, आगे कहते हैं प्रार्थना भी कर सकूं। आज तक ब्रह्मा आदि सारे देवता समस्त मुनिगण उत्तोत्तम वाणी से भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाए। ब्रह्मा जी स्वयं भगवान को कहते हैं, उन्होंने इतने सुंदर सुंदर श्लोक बोले हैं और उत्तोत्तम वाणी से प्रसन्नता उनको प्रसन्न करने की प्रयास किया है, क्योंकि पिछले अध्याय में हम लोग देखते हैं ब्रह्मा ब्रह्मो वाचा इंद्रो वाचा इतने सारे उवाच सारे सब सिद्ध महात्मी सब लोग आके चले गए, लेकिन भगवान नरसिंह प्रसन्न नहीं हुए। तो कहते हैं वो प्रसन्न नहीं कर पाए तो मैं कैसे प्रसन्न हूं। क्यों? उनको आभास है अपनी वस्तु स्थिति का, यथार्थ का, कि मैं असुर कुल में उत्पन्न हुआ हूं। फिर कहते हैं यद्यपि वे सारे सतोगुणी व्यक्ति परम योग्य थे तो फिर मेरे विषय में क्या कहा जाए, मैं तो बिल्कुल ही अयोग्य हूं। अगले श्लोक में बड़ा सुंदर बताते हैं प्रहलाद महाराज, मन्ने धनाबी जन रूप तपास सोजस तेजा प्रभा बल पौरस बुद्धि योगा नाराधना जाहि भवंति परम से पुंसो भक्त्या तुतोषा भगवान यजदूत पाया। बड़ा सुंदर प्रहलाद महाराज ने बताया, हमारे लिए सीखने योग्य है। भले ही मनुष्य के पास संपत्ति राजसी परिवार सौंदर्य तपस्या शिक्षा दक्षता कांति प्रभाव शारीरिक शक्ति उद्यम बुद्धि तथा योग शक्ति क्यों ना हो, किंतु मेरी समझ से, प्रहलाद महाराज कह रहे हैं मेरी समझ से इन सारी योग्यताओं से कोई भी व्यक्ति भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकता। भक्ता माम भी जान आती, भगवान को अगर प्रसन्न किया जा सकता तो केवल भक्ति के द्वारा, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। और फिर कहते हैं गजेंद्र ने ऐसा किया और इस तरह भगवान उनसे प्रसन्न हो गए। प्रभु जी माता जी इतना सुंदर जो श्लोक में दिया गया, प्रभुपाद ने स्टार्ट में जो अनुवाद में लिखा है कि असुर कुल में उत्पन्न होने के बाद भी उनका जन्म कहां हुआ, असुर वंश में उत्पन्न हुए, किंतु वे स्वयं असुर न होकर भगवान विष्णु के परम भक्त थे और असुरों की तरह कभी भी वैष्णवों से ईर्ष्या नहीं करते थे। अगली क्वालिफिकेशन क्या दी है श्रील प्रभुपाद ने श्लोक को जब ट्रांसलेट किया है, देखेंगे हम लोग निष्प्रहा, निष्प्रह कहते हैं उनको कोई ईर्ष्या किसी से नहीं हुई, बिना इच्छा की कोई ईर्ष्या नहीं होती थी। भगवत गीता में भगवान ने जो परम गुह्य ज्ञान है अर्जुन को जब दिया है तो 9वें अध्याय के पहले श्लोक में भगवान क्या बोलते हैं, इदम तू ते गुह्यतमं प्रच्छवयामि अनसूये वे ज्ञानम विज्ञानम सहितम यज्ञात्वा मोचये सुभात प्रच्छवयामि अनसूये वे। अर्जुन मैं तुमको जो ये ज्ञान दे रहा हूं, कौन सा ज्ञान दे रहा हूं, परम गुह्य ज्ञान जो अब तक मैंने दिया है 8वें अध्याय तक भगवत प्राप्ति तक, उसके बाद अब मैं तुमको परम गुह्य ज्ञान दे रहा हूं। और कैसे दे रहा हूं, ज्ञानम विज्ञानम सहितम, ज्ञान और विज्ञान के साथ में दे रहा हूं। देखिए प्रभु जी माता जी, जो ज्ञान होता है ना, एक तो शुष्क ज्ञान होता है, ड्राई नॉलेज, और शुष्क ज्ञान हमको संतुष्ट नहीं कर सकता। ज्ञान कैसा होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए। और प्रैक्टिकल भगवान कैसे बताते हैं, भाई भक्ति करनी है तो भक्ति करने के लिए कोई व्यक्ति तो साधन संपन्न है, कोई प्रभु जी ने कल कितनी सुंदर व्याख्या की थी अकिंचन शब्द की, नमो किंचन वित्ताया गुणवत्ते, अकिंचन अगर कोई है वो कैसे कर, भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त अपरक्षति तदम भक्ति उपनीतम अस्नामी प्रतात्मना। भक्ति से प्रेम से मुझे क्या दे दो, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, केवल वो दे दो। तो कहते हैं कि इदम तूते गुहे तमम प्रक्षव्यामी अनसूये वे अर्जुन, तुम ईर्ष्या नहीं करते इसलिए तुमको मैं ये गुह्य ज्ञान देने जा रहा हूं। कैसा ज्ञान? और विज्ञान के साथ में। और दूसरे श्लोक से लेकर के आप आठवें श्लोक तक देखेंगे, यथा आकाश नित्य कृष्णा जब बोलते हैं तो विज्ञान भी बताते हैं, उसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी देते हैं। प्रभु जी माता जी, एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मैं आपको अपना बताता हूं। हमारे ऑफिस में अबुधाबी के अंदर मेरे पास कम से कम 30-40 इंजीनियर थे और प्रमोशंस हुए। प्रमोशंस होने के बाद में सबका रिजल्ट निकला तो किसी को प्रमोशन हुआ, किसी को इंक्रीमेंट मिला। एक लीड इंजीनियर था, उसको अच्छा इंक्रीमेंट मिला, बड़ा प्रसन्न हुआ। और इतना प्रसन्न हुआ, सारे स्टाफ को जाकर के चर्चा करता था, अग्रवाल साहब ने इतना अच्छा किया, ये किया, वो किया। समय समाप्त हो गया, सबको बट गए। दो हफ्ते के बाद में एक दूसरा लीड इंजीनियर छुट्टी से वापस आया, और वो छुट्टी से वापस आया तो उसका पेपर उसको दिया गया, उसको प्रमोशन हुआ था। और जैसे ही इस इंजीनियर को, जो पहले इतनी प्रशंसा कर रहा था, पता चला उसका प्रमोशन हुआ है, उसकी सारी खुशी गायब हो गई। और उस समय उसको इतना दुख हुआ कि वो सारे जगह जाकर के कहने लगा कि इनसे खराब व्यक्ति कोई नहीं। क्यों? ईर्ष्या भाव। जो चीज पहले सुख दे रही थी, अगर मुझे पता चला उससे ज्यादा चीज दूसरे को मिल गई, तो ईर्ष्या भाव से क्या होता है, मेरा सुख चला गया। वास्तव में संसार में सुख और दुख जो है, गर्मी मात्रा स्पर्श कौनते शीतोष्ण सुख दुख दहा। दूसरे अध्याय का 14वां श्लोक कि सुख दुख कैसे हैं, गर्मी और सर्दी के समान आना जाना है, उससे ज्यादा उनका कोई महत्व नहीं है। प्रहलाद महाराज के बारे में इस श्लोक में आगे क्या बताया गया, देखिए आगे बताया गया है कि वे असुरों की तरह कभी भी वैष्णवों से ईर्ष्या नहीं करते थे। वैष्णवों से ईर्ष्या करने का मतलब क्या है, हम लोग देखेंगे। जब हिरण्यकश्यपु आतंक मचाता है तो किस तरीके से वो आतंक मचाता है, अपने जो उसके दैत्य हैं उन सबको आदेश देता है जाकर के, जो गौ संस्कृति है, वैष्णव संस्कृति है, ब्राह्मण संस्कृति है, उसका सबका संहार कर दो। माता अदिति जब कश्यप जी के यहां पर, ये दोनों माता अदिति के जो भी प्रसंग था उसकी वजह से दोनों उत्पन्न होने वाले हैं, और कश्यप जी माता दिति को ये इन्फॉर्म करते हैं, बताते हैं, सूचना देते हैं कि दिति तुमने गलत समय में अपने पुत्रों की याचना की है, और जो पुत्र उत्पन्न होंगे ब्राह्मण विरोधी होंगे। माता दिति कांप जाती हैं, उनका रोम रोम कांप जाता है, कहती है हे स्वामी, मैं सब कुछ सह सकती हूं लेकिन ब्राह्मण विरोध नहीं सह सकती। हिरण्यकश्यप ब्राह्मण है, ब्राह्मण है, कश्यप मुनि का पुत्र है, तो मैं वो नहीं सह सकती। तो क्या उपाय है, देखो तो जो पुत्र उत्पन्न होंगे तो ब्राह्मण विरोधी होंगे, लेकिन भगवान की कृपा से तुमको एक पौत्र उत्पन्न होगा जो भगवान का बहुत बड़ा भक्त होगा। तब भविष्यवाणी इन्होंने कर दी, तीसरे स्कंद में जाकर के 11वां-12वां अध्याय है कि भाई इस तरीके से तुम्हारा पुत्र जो होगा वो कैसा होगा, भगवान का महान भक्त होगा। तो हिरण्यकश्यप तो उसको बनाई इसलिए है, हम लोग सब जानते हैं जय विजय का जिस तरीके से श्राप मिला और प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यप के पुत्र हुए, उसमें एक छोटा सा प्रसंग आता है कि जब सनत कुमारों ने श्राप दे दिया और श्राप देने के बाद में शोर हुआ और भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को लेकर, अपने बाकी पार्षदों को लेकर, अपने सब गणों को लेकर के बाहर आते हैं। वैकुंठ के 7वें गेट के अंदर तो भगवान विष्णु हैं, बाहर कौन है, जय विजय और सनत कुमार। तो कहते हैं ये सब मेरी इच्छा से हुआ है। तो कुछ चर्चा करते हैं, कुछ लोग बताते हैं इसके बारे में कि एक समय की बात है, भगवान योग निद्रा में चले गए। योग निद्रा में जाने के बाद में उन्होंने जय विजय को आदेश दिया किसी को भी अंदर ना आने दिया जाए। माता लक्ष्मी बाहर गई हुई थी, अंदर आने का प्रयास किया, जय विजय ने उनको भी रोक दिया। उन्होंने कहा माता आप नहीं जा सकते। माता ने फिर बहुत समझाया कि मैं और भगवान में अभिन्न है, कोई अंतर नहीं। बड़ी कहने के बाद में फिर वो अंदर गई। जब अंदर गई देखा तो भगवान शेष सैया पर लेटे हुए हैं और योग निद्रा में हैं। उनके श्री चरण कल को अपनी गोद में लेकर के उनको बड़े प्रेम से सहलाने लगी। जब वो सहला रही हैं तो भगवान कहते हैं, लक्ष्मी धीरे 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 धीरे, उनके चरण कमल इतने सुकोमल हैं, माता लक्ष्मी की हथेली इतनी सुकोमल है, उससे सहलाने से भी उनको लग रहा है और धीरे करो और धीरे करो। माता लक्ष्मी सोचती हैं, ये विष्णु इतने बड़े बड़े, इनके जो जय विजय हैं इतने ताकतवर हैं, और इनके जो ये कैसे अपना बल कैसे दिखा, कैसे बलवान हैं। भगवान तो अंतर्यामी है, समझ गए, निश्चय किया, मेरी भी इच्छा थी कि मेरे से भी कोई युद्ध करने वाला हो, और लक्ष्मी की भी इच्छा है, ये भी देखना चाहती हैं, तो प्रबंध किया श्राप दिलाने का सनत कुमारों से, और प्रबंध हो गया। जब सनत कुमारों ने देखा कि भाई जय विजय बड़े सहर्ष बड़ी प्रसन्नता के समय, दो ऑप्शन दिए उनको जय विजय को, क्या ऑप्शन दिए, या तो 7 जन्मों के लिए भक्त बन जाओ या 3 जन्म के लिए शत्रु बन जाओ, चॉइस तुम्हारी है। बोले, भगवान से दूर रहना बड़ा कष्टकर कार्य है, 7 जन्म बहुत लंबे होंगे, 3 जन्म हमारे लिए योग्य हैं, हम शत्रु बनकर जाने को लो तैयार हैं। तो सनकादिक मुनि सोचते हैं, एक भागवत में बड़ा सुंदर लिखा है प्रभु जी माता जी, एक श्लोक आता है वहां पर, भगवान जब सनकादिक से चर्चा करते हैं तो कहते हैं, ये मेरे पार्षद, ये मेरे पार्षद, ये मेरे पार्षद, बार बार कहते हैं मेरे पार्षद। सनकादिक मुनि सोचते हैं, भागवत में लिखा है कि इन्होंने जय विजय को तो मेरा अपना कहा, हमको अभी तक अपना नहीं कहा। कहते हैं हमको अपना कैसे कहेंगे भगवान। तो जय विजय का जब निश्चित हो जाता है कि जाएंगे, तो कहते हैं, हे प्रभु हम क्या करेंगे, इन तीनों का आपको उद्धार करना है, तो एक जन्म में तो हम उसका हेतु बनेंगे। तो सनत कुमार प्रहलाद महाराज के रूप में उन्होंने अवतार लिया है, हम हेतु बनेंगे। दूसरे जन्म में माता लक्ष्मी कहती है कि मैंने शंका की थी, भगवान के चरण कमल सहलाते हुए मैंने शंका की थी, दूसरा उद्धार मैं हेतु बनूंगी, माता सीता का अपहरण होता है। और तीसरे में भगवान कहते हैं, लीला तो मैंने ही रची है, और तो कोई रचने वाला है नहीं, तीसरे में मैं उसका हेतु बनूंगा। शिशुपाल अनंत में भगवान उसका हेतु बनते हैं। तो देखिए, प्रहलाद महाराज कहां से आए हैं, सनत कुमारों से। तो भक्ति के जितने गुण सनत कुमार के अंदर हैं, उससे भी बड़े चढ़े गुण प्रहलाद महाराज में यहां पर हमको बताए गए हैं। तो क्या कहा गया यहां पर, आगे कहते हैं, कठिन परिस्थिति आने पर वे कभी क्षुब्ध नहीं होते थे, कभी भी क्षुब्ध नहीं होते थे पर भगवान जो है। कल हमने देखा, एक बार जब हिरण्यकश्यप कष्ट दे रहा है प्रहलाद महाराज को, तो उसने एक बड़ा लोहे का खंभा पूरा अग्नि से तपा करके लाल कर दिया, और लाल करने के बाद में आज्ञा दी कि इसको इससे बांध दो। जो भक्त होता है ना, भक्त हर परिस्थिति में, कोई भी कठिन परिस्थिति आए, कभी क्षुब्ध नहीं होता है। बड़े शांत भाव से भगवान का नाम लेते लेते प्रहलाद महाराज ने उसके ऊपर दृष्टि डाली। भगवान की कृपा से क्या देखते हैं, एक छोटी सी चींटी उस खंभे के ऊपर चढ़ रही है, इतना अटल विश्वास बढ़ गया उनका, तुरंत जाकर के खुद उस लोहे के खंभे से जाकर के लिपट गए। किसी परिस्थिति में भक्त विचलित नहीं होता है। हम अपने जीवन में देखते हैं, श्रील प्रभुपाद जब वृंदावन धाम छोड़ करके और जलदूत में अमेरिका पहुंचते हैं बोस्टन में, और किस प्रकार से उन परिस्थितियों में, आप पढ़िए, उन परिस्थितियों में भगवान का जो ये इतना सुंदर जो हमको एक संगठन दिया है, संस्था दी है, कैसे खड़ा किया उन्होंने, कितनी कठिन परिस्थितियों में कभी विचलित नहीं हुए। भक्त कभी विचलित नहीं होता प्रभु जी माता जी। हम लोग देखते हैं अम्बरीश महाराज के जीवन में, अम्बरीश महाराज कभी विचलित नहीं हुए, और किस तरीके की परिस्थिति उनके सामने आई कि सामने प्रत्यय आ गई, और जो है जो उनका कोई दोष भी नहीं था उसके बाद भी दुर्वासा मुनि ने अहित करने की इच्छा की। और एक साल घूमने के बाद भी क्या किया उन्होंने, एक साल तक अम्बरीश महाराज स्वयं व्रत करते रहे। जब अम्बरीश मुनि दुर्वासा मुनि वापस आते हैं तब उनकी सुदर्शन चक्र को शांत करके हाथ जोड़ के कहते हैं कि मुझे क्षमा करना। वो क्षमा मांगनी है उनको, लेकिन कहते हैं मुझे क्षमा करना। भक्त का जीवन प्रभु जी माता जी ऐसा होता है। भगवान भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 56वें श्लोक में बड़ा सुंदर बताते हैं, क्या कहते हैं, दुखेशु उन्मनाहा सुगे सुखेशु विगत स्प्राहा वीत राग भय क्रोधा स्थिर धीर मुनि उच्चयते। एक क्वालिटी बताई गई है इसमें कि प्रहलाद महाराज कैसे हैं, स्थिर बुद्धि है। लेकिन स्थिर बुद्धि हमारे पास कब आती है, स्थिर बुद्धि तभी आ सकती है हमारे पास जब दुखेशु उद्विग्न मनाहा। कृष्णा कहते हैं अर्जुन दुख में विचलित नहीं होना, सुगेशु विगत स्प्राह और सुख को अपने मन से मत लगाना, जब ऐसा करोगे तो वीत राग भय क्रोधा, जो ये क्रोध है आसक्ति है अपने आप ही चली जाएगी। कितना सुंदर हमको बताया गया है। हमारी उद्विग्नता क्यों आती है प्रभु जी, हमारे अंदर, हमारे शरीर के अंदर, हमारे मन के अंदर क्षोभ उद्विग्नता क्यों आती है, हमारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होने से। और इच्छाएं किस प्रकार से होती हैं, हमारी इच्छाएं कैसी हैं, अनगिनत हैं। प्रभुपाद जी ने क्या लिखा है ट्रांसलेशन में, प्रहलाद महाराज कैसे रहित थे इच्छाओं से, कौन सी इच्छाओं से रहित थे, भौतिक इच्छाओं से रहित थे। अगर कोई कहे कि भाई इच्छा शून्य हो जाओ, प्रभुपाद जी ने परपोर्ट में लिखा है कई जगह, वो संभव नहीं है। इच्छाएं तो होंगी लेकिन हमको इच्छाओं को क्या करना है, कृष्णाइज करना है, उनको कृष्ण में बनाना है। जो भी इच्छाएं हमारी हैं उनको कृष्ण से जोड़ देना है तो इच्छाएं कैसी हो जाएंगी, कृष्णमय हो जाएंगी। और जब इच्छाएं कृष्णमय हो जाएंगी तो भौतिक इच्छाओं से रहित भक्त हो जाता है। तो इसमें जैसे कहा गया है कि दूसरे अध्याय के 70वें श्लोक में आपूर्ण माणम अचल प्रतिष्ठम समुद्र मापा प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे स शांति मापनोति न काम कामी। शांति मापनोति, अगर कोई भक्त, अगर कोई जीव किस प्रकार से व्यवहार करता है, जिस प्रकार से समुद्र के अंदर हजारों लाखों नदियां आकर के गिरती हैं, समुद्र कैसा रहता है, धीर गंभीर रहता है, उसी प्रकार से इच्छाओं का काम है आना और धीर पुरुष का काम है उनको आने के बाद में विचलित नहीं होना। इतना सुंदर आगे लिखा गया है कि प्रहलाद महाराज ऐसा क्यों कर पाते थे। देखिए आपको लिंक लेना पड़ेगा प्रभु जी माता जी, सबसे पहले बता दिया कुल की चर्चा कर दी प्रभुपाद जी ने, कुल की चर्चा के बाद में प्रभुपाद जी ने बता दिया कि वे ईर्ष्या नहीं करते थे। क्यों, असुर कुल में होने के बाद में भक्त का पहला स्वभाव क्या बताया, ईर्ष्या नहीं करना। उसके बाद क्या बताया कि कोई भी परिस्थिति आए उसमें क्षुब्ध विचलित उद्विग्न हमको नहीं होना। आगे बताते हैं कि वेदों में वर्णित कर्मों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रुचि नहीं लेते थे। अब वेद तो वेद हैं, वेदों के रचयिता कौन है, स्वयं भगवान ब्रह्मा जी को वेद दिए। और जब चारों वेद हैं, वेदों के रचयिता भगवान हैं, इसका मतलब क्या है कि वेद भगवान से अभिन्न तो नहीं है ना, उनके श्रीमुख से निकले अभिन्न नहीं है। लेकिन वेदों में जो वाणी है, जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि जब नारद मुनि जाते हैं, कहां जाते हैं, शिला व्यास देव के पास में, और व्यास देव जी सरस्वती के किनारे अपने आश्रम में बैठे हुए हैं, उनका चित्त बड़ा उद्विग्न है, सोच रहे हैं मैंने यम का पालन का नियम का पालन किया, व्रत तप सबका पालन किया है, लेकिन मेरे चित्त में अभी भी क्षुब्धता है, क्षोभता है, इसका क्या कारण है। गुरुदेव आते हैं, नारद मुनि कहते हैं व्यास तुमने जो वर्णन किया है वेदों में वर्णित कर्म कांड को प्रधानता दी है। तो वही चीज यहां पर बताई गई है इसला प्रभुपाद के द्वारा, और जो इस श्लोक में कहा गया है, क्या कहा गया है कि प्रहलाद महाराज वेदों में वर्णित उसको जो है प्रधानता नहीं दे देते। दूसरे अध्याय के भगवद गीता के 42 और 43वां श्लोक है, मैं अभी श्लोक को स्किप करूंगा क्योंकि समय हो रहा है, काफी आगे चर्चा बाकी है तो श्लोक नहीं पढ़ेंगे। 42वें और 43वें श्लोक में दूसरे अध्याय के क्या बताया गया है, उसमें बताया कि जो वेदों में रुचि लेता है वो कौन है, अल्प बुद्धि वाला व्यक्ति है। अवपिष्टता वेदवार्ता, अवपिष्टता मतलब जिसकी बुद्धि अल्प है, ऐसा व्यक्ति उनके जो वेदों की अलंकारमयी भाषा है, जो उनके ये सारे जो कर्म कांड दिए हुए हैं स्वर्ग में जाने का दिया, उनके बारे में रुचि नहीं लेता। और उसी को भगवान ने आगे जाकर के व्याख्या की है 9वें अध्याय के 20वें और 21वें श्लोक में प्रभु जी माता जी, जब वो कहते हैं सोमोपाहा पूत पापा एक प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्र लोकम स्नंदि दिव्यान दिव्य देव भोगान तेतम भुक्त्वा सर्वलोक प्रसादम। फिर कहते हैं तेतम भुक्त्वा सर्वलोकम छिणे पुण्य मृत्यु लोकम विशन्ति एवं तरिधर्म अनुप्रपन्ना गतम गतम काम कामा लभन्ते। वेदों का क्या काम है, वेदों के हिसाब से जो तीनों वेदों का पालन करते हैं प्रार्थना करते हैं, क्या प्रार्थना करते हैं, स्वर्ग जाने की। आप पूछो किसी को कहां जाना है भाई, सबसे अच्छी चीज क्या है, स्वर्ग है। क्यों कहता है, वेदों में वर्णन है, श्रीमद् भागवतम में इतना सुंदर वर्णन है। एक ही एग्जाम्पल प्रभु जी माता जी मैं दूंगा कि अगर किसी देश के पास 150,000 एरोप्लेन हो वो बड़ा रिच माना जाता है, माना जाता है ना। अंबु शब्द का यूज हुआ है भागवतम के अंदर, स्वर्ग के अंदर अमरावती में करोड़ों प्लेन है, कोई तुलना है। लेकिन वो वर्णन सुनकर के जीव सोचता है स्वर्ग में जाकर के इच्छा करने की, क्या क्या छिने पुण्य मृत्यु लोकम विशन्ति, लेकिन जब पुण्य तुम्हारे छीण हो जाएंगे वहां भी मृत्यु लोक में आओगे, गतागतम काम कामा लभन्ते, ये आना जाना तुम्हारा लगातार चलता रहेगा। तो इसका क्या मतलब है, इसका कोई यूज नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा, क्या कहा, सर्वस्य चाहम निविष्टो मत्ता स्मृत्यान पहुंच वेदेश सर्वे रहमेव वेद्यो। वेदों का मतलब क्या है, मुझको जानना। तो प्रहलाद महाराज कभी भी वेदों में रुचि नहीं लेते थे। आगे बताया है निसंदेह वे हर व्यक्ति को हर वस्तु को व्यर्थ मानते थे, भौतिक वस्तु को, इसलिए भौतिक इच्छाओं से पूर्णतया रहित थे। अब देखिए जो भौतिक वस्तु है उसको व्यर्थ मानना कितनी बड़ी बात है प्रभु जी माता जी। हम लोग सोचते हैं कि आज छोटा घर है बड़ा घर आ जाए, छोटी गाड़ी है साइकिल है स्कूटर है उससे आगे बढ़ जाएं। भौतिक स्पर्धा चल रही है, इवन भक्तों में भी, जो वास्तव में क्षमा करिए प्रभु जी माता जी, कुछ भक्तों में भी ये स्पर्धा चलती है, आज मेरी ये पोजीशन है कल को वो पोजीशन होनी चाहिए फिर वो पोजीशन होनी चाहिए, और जो नीचे हैं उनको तो मैं ठीक से देखता भी नहीं हूं, खाली ऊपर ही देखता हूं। ऐसे व्यवहार को भगवान ने भगवद गीता के 16वें अध्याय में 10वें और 11वें श्लोक में क्या कहा गया है, आसुरी स्वभाव। असुर होकर प्रहलाद महाराज भक्त हैं और भक्त होकर आसुरी स्वभाव होता है, तो इसलिए क्या कहा यहां पर, यह कहा कि वे भौतिक इच्छाओं को भौतिक वस्तुओं को व्यर्थ मानते थे, और वास्तव में व्यर्थ है। कृष्णा ने क्या कहा, दुखालयम अशाश्वतम, पूरा भौतिक संसार दुखों का घर है और टेम्परेरी है, उसका कोई यूज नहीं है प्रभु जी माता जी। तो इसीलिए जब भगवान कंक्लूड करते हैं दूसरा चैप्टर भगवद गीता का, तो 71वें श्लोक में क्या कहते हैं, विहाय कामान्य सर्वान पुंसाम चरति निष्प्रहा निर्ममो निरअहंकारा से शांति में गच्छति। भक्ति केवल शांति के साथ की जा सकती है, चित्त उद्विग्न होगा भक्ति मुश्किल हो जाएगी। महाराज ने हमको सिखाया भक्ति कैसी होनी चाहिए, भक्ति बहुत ही साधा सिंपल होनी चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड भक्ति होनी नहीं चाहिए, क्योंकि भक्ति जब कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी तो भक्ति हमारे पास रुकेगी नहीं टिकेगी नहीं। भक्ति जब साधा जब बड़ी भी सिंपल रहेगी तभी हमारे जीवन में भक्ति आ सकती है। तो इसलिए कहा गया विहाय कामान्य सर्वान, कि जो व्यक्ति भौतिक तृप्ति की इच्छाओं को त्याग देता है, और वो कब त्यागेगा प्रभु जी माता जी, जब वो ये समझेगा कि जितनी भी भौतिक वस्तुएं कैसी हैं, असार हैं, उनमें कोई सार नहीं, वो आसार है, तब वो जाकर के उसको त्यागने की स्थिति में आएगा। अगर उसको भौतिक वस्तुओं में सार दिखाई देता रहेगा तो कभी भी वो उनको त्याग नहीं सकता। और सबसे बड़ा उदाहरण हमारी मूर्खता का क्या है, हम रोज देखते हैं प्रहलाद युधिष्ठिर महाराज का बड़ा अच्छा प्रश्न हुआ, उन्होंने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि हर व्यक्ति देखता है पिताजी चले गए, माताजी चली गई, दादाजी चले गए, मित्र चले गए, सगे संबंधी चले गए, मैं यहीं रहूंगा, इससे बड़ी मूर्खता क्या है। जाना सबको है, और कैसे गए ये बताइए, कोई कुछ साथ लेकर के गया, किसी का अनुभव है कोई साथ लेकर के गया, कुछ लेकर के नहीं गया, इसका मतलब क्या है, सारी चीजें कैसी हैं, आसार हैं। और ये बार बार हमको बताया जाता है, जब हम जाते हैं शमशान लेकर के किसी को क्रिया करने के लिए तो क्या कहते हैं, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य, ये कहते जाते हैं ना प्रभु जी माता जी। और जब वहां पहुंचे और बाहर निकले तो क्या होता है, वो राम नाम सत्य तो वहीं छूट जाता है, उसके बाद संसार सत्य है शुरू हो जाता है, लेकिन वास्तव में सत्य यही है। तो इसलिए प्रहलाद महाराज कैसे थे, भौतिक इच्छाओं से रहित थे, क्यों, क्योंकि किसी भी भौतिक वस्तु को अपना वो मानते नहीं थे। फिर क्या कहा गया, स्थिर बुद्धि तथा संकल्प में होने के कारण उन्होंने सारी विषय वासनाओं का दमन कर दिया था। प्रहलाद महाराज जब हिरण्यकश्यप को बुलाता है, वो उनकी गोद में बैठा करके पूछता है तुमने क्या सीखा, एक बड़ा सुंदर श्लोक बोलते हैं, सातवें स्कंद के पांचवें अध्याय का 30वां श्लोक है, श्री प्रहलाद उवाच मतेन कृष्णे परता स्वतो वा मिथो विपद्येत ग्रहाव्रतानाम अनांत गोभीर विस्ताम तमिश्रम पुनचर्वित चर्वणानाम। वो क्या चर्चा करते हैं कि जितनी भी इंद्रिय सुख है वो किसके समान है, पुनश्चर्वित चर्वणानाम, जो चूसा हुआ है उसको वापिस चूसना, जैसे गन्ना है, एक जो शुगर केन गन्ना है ना, किसी ने उसको खा लिया, चूस लिया, दूसरे को दिया, उसने फिर चूस लिया, तीसरे को दिया, फिर उसने चूस लिया, लेकिन उसमें से कुछ जूस निकलता, लेकिन उसको चूसते रहते हैं। तो क्या कह रहे हैं प्रहलाद महाराज कि जो इंद्रियां हैं कैसी हैं, अनंत गोविंद, अदांत गोविंद, उनकी तृप्ति कभी हो नहीं सकती। तो इसलिए जो प्रहलाद महाराज के यहां पर गुण इतने सारे दिए गए हैं, समय का अभाव है इसलिए हमको विश्राम करना पड़ेगा, कि जो ये गुण हमें बताए गए हैं उन गुणों में कोई ऐसा गुण है प्रभु जी माता जी जो असंभव हो हमारे जीवन में आना, कोई असंभव गुण है इसमें, कोई भी गुण असंभव नहीं है प्रभु जी माता जी। लेकिन कब संभव है, जब हम लोग जो भक्तों के चरण चिन्ह हैं, भक्तों के जो आदेश हैं उनका हम लोग पालन करते हैं। पृथु महाराज, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज सबने एक भगवान से क्या मांगा, क्या मांगा भगवान से, भगवान से यही मांगा, जब नारद प्रहलाद महाराज कहते हैं कि प्रभु मुझे अपने गुरु के आदेश का पालन करने दो, मुझे गुरु की सेवा करने दो, मैं उसके अलावा और कुछ नहीं चाहता। और वही प्रभुपाद जी ने प्रपोर्ट में अंत में लिखा है कि प्रहलाद महाराज के इसका ज्वलंत उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि किस प्रकार गुरु का चिंतन करके उनके आदेशों को शांतिपूर्वक ग्रहण किया जाए। तो भगवान से यही प्रार्थना है कि राधा श्याम सुंदर जी से, कृष्ण बलराम से, गौर नित्याय जी से, कि हम सबके जीवन में जो ये आदित्य गुण हैं, इन गुणों का एक बिंदु हमारे जीवन में आ जाए, जिससे हमारा जीवन भी सफल हो जाए। श्रीमद् भागवतम ग्रंथराज की, श्रील प्रभुपाद की, श्रील गुरुदेव की, त्याई गौर प्रेमानंदे।